हम सभी बाबा के बच्चे पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, परंतु समय को देखते हुए क्या अनुभव होता है। आप जानते हैं जब माराथन रेस होता है, शुरू शुरू में अपने स्पीड में ही लोग धीरे 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 दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। जब लास्ट थोड़ा रह गया, एकदम जी जान लगा के, 20 नाखून लगा के एकदम दौड़ते हैं। कोई कितना पीछे भी है, एकदम आगे नंबर ले लेता है, प्राइज ले लेता है। ठीक इसी तरह हमारी पढ़ाई भी है। दुनिया में कोई अगर एग्जाम नजदीक आ गया और कोई एडमिशन लेता है क्या? नहीं। परंतु बाबा का ये विश्वविद्यालय है, ये एक अनोखा विश्वविद्यालय है। दुनिया में अनेक स्कूल कॉलेजेस हैं, लेकिन बाबा का जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, इसमें और दुनिया में क्या अंतर है? दुनिया में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, लेकिन यहां सर्वोच्च टीचर एक है, सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाला, अलग अलग पीरियड नहीं, एक ही पीरियड में सारे सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं। और यहां कोई एडमिशन फीस नहीं है, एडमिशन सेशन नहीं है, कभी भी कोई आके एडमिशन ले सकता है। यहां एंट्रांस एग्जामिनेशन नहीं होता है। पहले बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, फिर वहां से अच्छे स्टूडेंट को ही लेंगे। यहां ऐसा कुछ नहीं है। वहां एज लिमिट होता है पढ़ाई का, यहां कोई एज लिमिट नहीं है, बच्चों से लेकर बूढ़े तक। और यहां कोई पहले की पढ़ाई की भी कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहां बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब एक ही क्लास में एक ही साथ पढ़ते हैं। और अभी अभी एडमिशन लेने वाला भी और 50 साल पुराना स्टूडेंट भी एक ही साथ पढ़ते हैं। दादा भी है तो पोता भी है, एक ही साथ पढ़ रहे हैं। पीएचडी डिग्री वाला भी है और हमारे अंगूठा छाप वाले बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी एक ही क्लास में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बाबा कहते हैं कि बच्चे इस पढ़ाई में तुम कितने भी लास्ट आए हो, लेकिन फर्स्ट पुरुषार्थ करोगे तो फर्स्ट आ सकते हो। दुनिया में ऐसा कोई नहीं कह सकता है, किसी भी पढ़ाई में ऐसा नहीं है। क्योंकि बाबा कहते हैं शुरू शुरू में ज्ञान इतना रिफाइन नहीं था, अभी जो आप आते हो आपको पूरा मक्खन मिल रहा है, लास्ट में आए उसमें मक्खन मिल रहा है, एकदम रिफाइन नॉलेज है, तीव्र प्रसाद कर एकदम फर्स्ट जा सकते हो, पुरानों से भी आगे जा सकते हो। तो अभी जो समय चल रहा है, जैसे बताया माराथन रेस में एकदम लास्ट राउंड जब आ जाता है तो जी जान लगा के एकदम लोग दौड़ते हैं, नंबर ले लेते हैं। ठीक इसी तरह हम कितने सालों से हैं या नए नए भी हैं, कोई बात नहीं, जो पास हो गया हो गया, लेकिन अब भी से जी जान लगाएंगे तो हम भी नंबर ले सकते हैं। ये बाबा का वरदान है, इस पढ़ाई की विशेषता है, नवीनता है। मैं जब 30 साल पहले हॉस्पिटल खुला, पहले तो पांडव भवन ही था, छोटा सा परिवार। जब हॉस्पिटल पहला ब्रांच कहो कि शाखा कहो या बच्चा कहो पांडव भवन का, हम थोड़े भाई बहने थे। और उस समय सब हमारी दादाएं दादियां सब खूब पालना मिली। तो मैं एक बार विश्वरत्न दादा बहुत प्यार करते थे मुझे, विश्वरत्न दादा को मैं पूछा, दादा आप तो बाबा को देखे हो, बाबा से मिले हो, आप कितने लकी हो, हम तो लेट आए, क्या करें अभी हम इस पढ़ाई में कैसे आगे जा सकते हैं, बाबा के तो लास्ट फास्ट हो सकते। तो दादा ने क्या कहा जानते हो? दादा ने कहा कि एक कॉलेज में आप बहुत लेट हो गए और लास्ट एग्जामिनेशन के पहले ही आप एडमिशन ले रहे हो, तो एडमिशन लेने के बाद क्या आप वहां कॉलेज की जो वेरियस एक्टिविटीज होती है, जैसे वहाँ ड्रामा होगा कि और कोई स्पोर्ट्स होगा और कुछ होगा, ऐसे भिन्न भिन्न एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन नहीं, वो करेंगे तो फिर कैसे होगा? कहते जैसे लौकिक पढ़ाई में भी सब कुछ छोड़ छाड़ करके दिन रात अगर कोई वहां लग जाएगा तो जाके कॉम्पेंसेट कर सकता है। यहां भी ऐसे हैं, क्योंकि उस समय पांडव भवन एक ही था, ज्ञान सरोवर नहीं था, शांति भवन नहीं था, कुछ नहीं था। तो आए दिन कुछ ना कुछ कल्चरल प्रोग्राम कुछ ना कुछ होता था। तो दादा ने कहा यहां तो रोज कुछ ना कुछ होता रहता है, आप अपने पढ़ाई ज्ञान योग छोड़ के इसमें अगर कल्चरल प्रोग्राम में लग जाओगे और कहीं लग जाओगे तो पढ़ाई में कैसे आगे जा सकते? अभी बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा पढ़ाई में। मैं जगदीश भाई को पूछा कि भाई साहब हम कैसे लास्ट सो फास्ट हो सकते हैं? तो जगदीश भाई ने क्या कहा जानते हो? जगदीश भाई ने कहा अगर यहां आप प्रोग्राम अटेंड करके तालियां बजाते रहोगे ना, सतयुग में भी तालियां बजाते रहोगे। आपको यहां ये सब बातें, आप सन्यासी जैसा रुखा सुखा भी नहीं हो सकते हो, परिवार भी है, संगठन में भी रहना है, जाओ पार्टिसिपेट करो थोड़ा नेहरा पेरा, कब खिसक जाओ। मैं देखता था प्रैक्टिकली भी जगदीश जी को, सब में जाएंगे हाजरी, फिर कब वहां से खिसक जाएंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। फुल टाइम इन्वॉल्व होके एकदम बिल्कुल रात को 11 बजे तक कल्चरल प्रोग्राम देखो, दूसरे दिन अमृतला मिस, ऐसा कभी नहीं देखा। जगदीश भाई जी कहते थे मैं सारे जीवन में 35 years मोर देन 35 years 2 बजे से पहले उठ के तपस्या किया। मैं बाबा जहां शशि बहन जी का ऑफिस से पांडव भवन का उसके ऊपर में नया नया बना था, तो जगदीश भाई आते थे तो वहां उनको एकोमोडेशन मिलता था, जहां अभी निरोड़ भाई का कमरा था, आप सभी देखे होंगे, वहां रहते थे। तो वहां से डायरेक्ट बाबा का कमरा दिखता था। कहते थे मैं 2 बजे से पहले नहा धो के तैयार होके रहता था, सर्फ बाबा के कमरा का लाइट 2 बजे सर्फ जलता था, जैसे जलता था मैं जाके बाबा को गुड मॉर्निंग करता था। बाबा एकदम ऐसे पावरफुल दृष्टि से वरदान देते थे। तो मैं 35 साल 2 बजे से पहले उठ के तपस्या किया। ये जितनी सारी किताब आप देख रहे हो कोई सारा जीवन में पढ़ भी नहीं पाया होगा, पढ़ भी नहीं सकेगा, मैं आपको बता रहा हूं। आप सभी पढ़े हो सारा, जितने सारी हमारे संस्था में जितने सारी किताब है, कोई अगर पढ़े हैं तो हाथ उठाओ, सारी किताब कोई नहीं पढ़ा का। एक व्यक्ति 250-300 किताब लिख दिए, कैसे लिखे? कहते थे मैं 2 बजे उठ के आधा घंटा तपस्या करने के बाद बैठ जाता था लिखने, जैसे ऊपर से फ्लो हो रहा है, मैं कंटिन्यूअसली लिखता जाता था, बिल्कुल मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं पढ़ता था। फिर मान लीजिए कहीं जाना पड़ा बीच में, उठ के चला गया, फिर आने के बाद वहां से लिखना शुरू हो जाता था, पढ़ता नहीं था कि क्या इसका कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए पढ़ता नहीं था। तो अभी समय है लास्ट सो फास्ट जाने के लिए। आज भी साकार मुरली में प्रश्न में बहुत सुंदर एक प्रश्न था, चक्रवर्ती राजा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई 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 का महत्व रखना पड़ेगा। पढ़ाई मना चारों सब्जेक्ट, ज्ञान योग धारणा सेवा। दिन रात खाली योग में बैठे रहेंगे तो एकदम नंबर वन आगे ले जाएंगे? नहीं हो सकता है। कोई साइंस में तो 100 मार्क ले लिया लेकिन ज्योग्राफी में भी फेल हो गया तो फेल होगा ना। हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, चारों सब्जेक्ट में हमें पास होना है, चारों सब्जेक्ट का बैलेंस रखना पड़ेगा। मुझे याद है बहुत साल पहले ही पुराने बात, उस समय तो बाबा पर्सनली मिलते थे, एक भाई बाबा के सन्मुख गया तो बाबा ने कहा बच्चे ज्ञान योग का बैलेंस रखते हो? तो मैंने कहा कि बाबा क्या जरूरी है, अभी तो विनाश हो जाएगा, याद तो सब कुछ है, योग करना है। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, योग एक कवच है, आप अगर योगयुक्त है तो माया आएगी, युद्ध होगा तो कवच होने के कारण माया आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी, परंतु ज्ञान एक तीर है जो दूर से माया को पहचान कर माया को भगा सकते हो, समय व्यस्त नहीं होगा। तो बैलेंस रखना पड़ेगा, ज्ञान और योग का बैलेंस। लेकिन सेवा नहीं करेंगे तभी ऊंच पद नहीं मिलेगा। आप दिन रात खाली मुरली 10 बार पढ़ रहे हैं, योग में बैठे कोई सेवा नहीं करते हैं, खाते पीते हैं, सोते रहते हैं, भाग्य कैसे बनेगा? सेवा भी करनी पड़ेगी। सवेरे शाम रेड लाइट के अंदर 2-2 घंटा 3-3 घंटा बैठते तो हैं, लेकिन सेवा में आते हैं तो गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ होते हैं, दूसरों को तंग करते हैं, उस पद मिलेगा? सवाल ही नहीं उठता है। धारणा सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो चारों सब्जेक्ट में कैसे आगे नंबर ले आ जाए? जो मुझे समझ है, जो बाबा की मुरलियां पढ़कर, दादियों का, बड़ों का, वरिष्ठ भाइयों का अंग संग्रह के जो मुझे अनुभव है, मैं आपको शेयर करूंगा। ज्ञान सब्जेक्ट में आगे कैसे नंबर ले सकते हैं? देखिए, मम्मा बाबा सबसे हमारी पढ़ाई में सबसे टपर टफ स्टूडेंट है, क्योंकि सारे जीवन काल में एक दिन भी मुरली मिस नहीं हुई, एक दिन भी मुरली। हम स्वयं को पूछें, बहुत बाबा के बच्चे मुरली मिस करते हैं, लेकिन कुछ भी हो जाए मुरली मिस नहीं करने। मुरली मिस करेंगे तो कैसे ज्ञान में कैसे पास होंगे? जगदीश भाई जी कहते थे, अगर कोई स्टूडेंट एक दिन भी एब्सेंट नहीं हुआ, एक दिन भी एब्सेंट नहीं, अगर वो फेल होता है तो टीचर की गलती है, स्टूडेंट की गलती नहीं है। टीचर उसको ठीक से नहीं पढ़ाया, वो बेचारा तो आया है क्लास में, तो आया है, तो स्टूडेंट की गलती नहीं है, टीचर की गलती है। इसी प्रकार इस पढ़ाई में भी आप एक दिन भी मिस नहीं करेंगे तो बाबा बंधा हुआ है आपको पास कराने के लिए, बंधा हुआ है। तो एक दिन भी मुरली मिस ना हो। लेकिन मुरली तो हम सब बहुत भाई बहन मिस नहीं करते हैं, फिर भी नंबर वार क्यों हो जाते हैं? कारण है मुरली को कैसे हम सुनते हैं। विश्वरतन दादा कहते थे, रेगुलर, पंक्चुअल, एक्यूरेट, अलर्ट, अटेंटिव होकर मुरली सुनना है। मैं प्रैक्टिकली देखा हूं, दादा डट टाइम पर पूरा पहुंच के आके बैठ के सुनते थे। तो मुरली कितनी लगन से हम सुनते हैं, कितने प्यार से सुनते हैं। बाबा ने कहा है, यही एक मुरली ये लाठी है, तुमको घर तो क्या राजधानी तक पहुंचा देगा, लेकिन यही मुरली सुन के कोई विश्व महाराजन बनता है, कोई फिर दास दासी भी बनता है। एक ही क्लास के स्टूडेंट भी कॉलेज में देखते हैं, दुनिया लौकिक में सेम कॉलेज में पढ़ के कोई आईएएस ऑफिसर बन रहा है, कोई बहुत बड़ा टॉपर कहीं बन रहा है, लेकिन उसी में पढ़ के भी कोई जॉब भी नहीं है। तो हम कितने लगन से पढ़ते हैं ये पढ़ाई को। हम लौकिक पढ़ाई इतनी लगन से पढ़ते हैं, जो मेडिकल साइंस पढ़े हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका अनुभव पूछ लेना। इतना मेहनत यहां कोई करे, मैं कहूंगा उसका विश्व महाराजन सीट फिक्स है। लौकिक पढ़ाई इतने मेहनत करना पड़ता है, इतने मेहनत बात मत पूछो। इस पढ़ाई में इतना मेहनत कोई करे तो उसका बेड़ा पार हो जाए। दिन रात एक करके पढ़ना पड़ता था, यहां इतना लगन है नहीं है, क्योंकि वहां लाखों रुपया फीस देना पड़ता है, रीवेस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लगन रहता है, कॉम्पिटिशन रहता है। यहां कोई फीस नहीं, कुछ नहीं, इसलिए सबसे बड़ी बात है कि वहां तो 2-4 साल का ही कोर्स है, इसलिए ये तो जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। तो वो लगन फिर धीरे 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 इतना इंटेंस नहीं रहता है, लेकिन अंत तक हमारा नशा कम ना हो पढ़ाई में। जैसे बाबा सारे जीवन काल में एक दिन एब्सेंट तो नहीं, एक दिन लेट भी नहीं, खाली एक दिन, सारे जीवन काल में एक दिन बाबा 2-4 मिनट लेट आए क्लास में, और लेट आने के बाद सबके सामने झुक के हाथ ऐसा करके माफी मांगे, बच्चे आई एम सॉरी। और बाबा कारण भी बताया। बाबा ने कहा कि बाबा सारी रात सकास दे रहे थे, इसलिए मुरली से पहले आने से पहले थोड़ी सी झपकी लग गई। रात भर बाबा जागरण करके कई आत्माओं को सकास दे रहे थे, इसलिए सवेरे जस्ट थोड़ा सा आंखें झपकी आ गई, इसलिए लेट हो गए 2 मिनट, नहीं तो सारे जीवन काल में बाबा 1 मिनट भी लेट नहीं। और हम क्या करते हैं, दौड़े दौड़े यहां पे मुरली क्लास में आते आते मीठे बजे पूरा हो गया, क्वेश्चन आंसर भी आधा हो गया, और हाँ करके सुन रहे हैं, आधी मुरली ऊपर गया, फिर मुरली पूरा होने के बाद पहले से ही उठ के बजा रहे हैं। टोली खा के नीचे उतरते उतरते मीठे बच्चे भूल गया, गाड़ी में बैठे बैठे वो क्वेश्चन आंसर भूल गया, जाके ब्रेकफास्ट करते करते सार भूल गया, ड्यूटी में पहुंचते पहुंचते मुरली कैसी थी? बहुत अच्छी मुरली थी, बहुत अच्छी मुरली थी। जानकी दादी कहती थी कि मैं जब ज्ञान में आई 6 महीना लेट आई तो बाबा के सामने रोई, बाबा मैं 6 महीना लेट हो गई, मैं सबसे पीछे हो जाऊंगी, क्या करूंगी। तो बाबा ने कहा बच्ची तुम मुरली 8 बार पढ़ तो सबसे आगे चली जाएगी। दादी कहती थी मैं 16 बार पढ़ती थी मुरली। तो कितनी लगन से पढ़ते हैं, स्वयं भगवान मेरे लिए परम धाम छोड़ के पढ़ाने आए हैं, मैं बाबा का सबसे लाडला स्टूडेंट, नंबर 1 गर्डली स्टूडेंट हूं, इतनी लगन से। तो बड़ों का जब अनुभव सुनते हैं ऐसा नशा चढ़ता था। मैं शुरू में जब मधुबन आया था, मैं 14 साल, दादी ने कहा कि बाबा ने हमको 14 साल भट्टी कराए, त्याग तपस्या कराए, फिर सेवा के लिए भेजे, और आप लोग आए दिन घर जाऊं करते रहते हो मधुबन निवासी। तो मैं बोला दादी मैं भी नहीं जाऊंगा, और सचमुच 14 साल तो नहीं गया, अभी तक भी नहीं गया नहीं है घर में वाला, नहीं जाऊंगा, जिसको जरूरी है मेरे पास आए, मैं क्यों जाऊं किसके पास। तो मैं एकदम ओम शांति भवन में सामने का फ्रंट सीट मेरा पूरा फिक्स था, उसमें रोज बैठता था। दादी रोज इतना एकदम कहती थी बाबा हमेशा सामने आओ सामने सामने आओ, सभी दादियां देखना सब बुलाएगी, नजदीक आओ नजदीक आओ, बाबा को भी पसंद नहीं पीछे बैठने। जो पीछे बैठने वालों को बाबा टाइटल देते थे, क्या जानते हो, बाबा के तहत LLB, LLB माने लॉर्ड ऑफ द लास्ट बेंच, लॉर्ड ऑफ द लास्ट बेंच। बाबा को दादियों को बिल्कुल पसंद नहीं पीछे कोई बैठे, कहते नजदीक आओ नजदीक आओ नजदीक। तो कभी भोग आने से पहले गुरुवार के दिन भोग आता था तो थोड़ा लेट हो गया, तो दादी कहती थी ऐसे बैठो बाबा जैसे बैठे हैं, ऐसे टांग पर टांग लगी अर्धपद्मासन में, ऐसे बैठो, क्योंकि ऐसे बैठना ये राजयोगी का लक्षण नहीं है। बैठक से ही पता चलता है कौन साधक कैसा है, उसके बैठक की तरीका से पता चलता है। बाबा 80 साल की उम्र में भी जैसे बैठते थे, राजा जैसे 50 साल वाले सामने बैठ के ऐसे ऐसे करते थे। तो सत्ययुग में भी सिंहासन में बैठेंगे ऐसे करके बैठे कैसा लगेगा। पढ़ाई अटेंशन से पढ़ना है, एकदम लगन से, एक एक बूंद जैसे चात्रक जैसे एक एक बूंद के लिए तरसता है पूरा, एकदम अटेंशन देके। ऐसे बाबा की मुरली, एक एक महावाक्य बाबा के लाखों रुपया का, इतना अटेंशन से हम सुनते हैं पढ़ते हैं। मेरे साइड में एक भाई बैठता था, मैं एक दिन उसका डायरी देखा, हम लिखते थे तो डायरी देखा, तो कितना नशा, मैं आपको बता रहा हूं। बाबा रोज हमें पढ़ाते हैं मीठे बच्चे, है ना नहीं, लेकिन वो क्या लिखता था जानते हो, मीठे बच्चे अपना नाम लिखता था, फिर मीठे बच्चे राजू, और फिर लिखता था जैसे बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं, इतना नशा हो, इतना लगन हो। और मुरली को फिर से रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा ने कहा द्वापर युग से तुम सुनते सुनाते, ये तो द्वापर युग से चल रहा है, खाली मुरली सुनने से सुनाने से कुछ नहीं होगा। मुरली को समाना है और स्वरूप बनना है। हमारी पढ़ाई में थ्योरी एग्जामिनेशन नहीं है, दुनिया में थ्योरी एग्जामिनेशन होता है, यहां सब कुछ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, सब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है। जो प्रैक्टिकली पास है पास है, तो यहां स्वरूप बनना है। बाबा जो कहते हैं खाली रट के सुना देने से तो जिसकी मेमोरी थोड़ी शार्प है वो सब सुना देगा ए टू जेड। मुझे याद है मैं जब नया नया ज्ञान में आया था 86 की बात है, एक भाई था सामने बैठता था, लिखता नहीं था, लेकिन मुरली के बाद बहन जी पूछती थी कि आपने क्या सुना, नॉन स्टॉप पूरा मीठे बच्चे से लेके लास्ट तक मुरली पूरा नॉन स्टॉप 15-20 मिनट तक पूरा मुरली का सारा पॉइंट सुना देता था, लिखता नहीं था, सारा सुना देता था बिल्कुल। मैं तो वंडर करता था ये कंप्यूटर है कि क्या है। लेकिन थोड़े दिन के बाद ओम शांति, ज्ञान से भी ओम शांति। तो जिसकी लौकिक में बुद्धि थोड़े शार्प है वो सारे रट लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। प्रैक्टिकल आचरण हमारे जीवन, आप कितने बार मुरली पढ़ते हो किसी को कोई मतलब नहीं, आप कितने घंटा रेड लाइट के अंदर आंख ऐसे करके योग कर रहे हो किसी को कोई मतलब नहीं। हमारा प्रैक्टिकल जीवन क्या है, चाल चलन बोल व्यवहार आचरण क्या है। बाबा आए हैं हमारे दैवी चाल चलन हमारे जीवन में भरने के लिए। हमारे अगर आचरण ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, बोल ठीक नहीं है, तो मुरली कितने बार भी पढ़ो क्या मतलब है। तो इसलिए मुरली सुन के समाना है, स्वरूप बनना है। इसलिए दादी, जानकी दादी कहती थी, एक बार मुरली सुनने के बाद जाके मैं नाश्ता कर रही थी, बाबा आए, अच्छा नाश्ता खाना शुरू हो गया। तब से लेके अभी तक जीवन में जब तक मैं मुरली मनन करके किसी को नहीं सुनाती हूँ, मैं नाश्ता नहीं करती हूँ। दादी कहती सबको, दादियों को जाओ बच्चे जाओ घूमो, जाके एकांत में बैठो, चिंतन करो बाबा आज क्या गया। तो मुरली को मनन करना, मुरली को मनन करना, बाबा ने क्या कहा दादी को। मैं प्रकाशमणी दादी को बहुत बार पूछता था, दादी कैसे पुरस्कार करना। दादी कहती थी, श्रीमंत भाई बहुत सहज है, खाली बाबा जो मुरली रोज पढ़ाते ना उसमें से एक पॉइंट ले लो, बहुत पॉइंट जरूरत नहीं, एक पॉइंट जो आपको दिल को टच करता है वो पॉइंट को लेके प्रैक्टिकल सारा दिन उस पर अटेंशन लेके उसको जीवन में उतारो, एक दिन आप स्वरूप बन जाओगे मुरली का स्वरूप। और मैं प्रैक्टिकली देखता था, सारा दिन में कोई गेस्ट लेके जाओ, कोई लेके जाओ, दादी वही मुरली का पॉइंट सुनाई और कुछ नहीं सुनाई, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, मुरली में जो पॉइंट है वही सुनाई। तो मुरली को हम कितने खुद मनन करते हैं, गहराई में चिंतन करते हैं, उसको जीवन में आचरण में उतारने के लिए, क्योंकि बाबा ने कहा एक बार सुना अनसुना कर दिया तो इसका बड़ा बोझ चढ़ता है, कभी जीवन में फिर प्रैक्टिकली नहीं होगा। मान लीजिए बाबा कहते बच्चे तुम्हें कभी गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, सुना सुन लिया, लेकिन उस दिन 10 बार गुस्सा किया, फिर 10-15 दिन के बाद फिर मुरली में आएगा कि बच्चे तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, फिर अटेंशन देना, फिर जीवन में कभी परिवर्तन होगा ही नहीं। लेकिन अंडरलाइन करके आज बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए मर मिटूंगा, कितना भी सहन करना पड़ेगा मुझे नहीं होना, अगर कर लिया तो। अगर टीचर कोई होमवर्क देता है अगर हम करते हैं तो ब्लेसिंग्स मिलती है ना, तो बाबा भी वरदान दे देते हैं। तो मुरली में विशेष अंडरलाइन करके मुझे एक पॉइंट को प्रैक्टिकल जीवन में आचरण में उतारना है। सारी मुरली याद करने की जरूरत नहीं, वरदान क्या था, स्लोगन क्या था, ये क्या था, वो क्या था, जरूरत नहीं, एक ही पॉइंट को मुझे आज सारा दिन इसको प्रैक्टिकली करना, जो प्रैक्टिकली करेगा वो पाएगा, ये है लास्ट पुरुषार्थ। दूसरा सब्जेक्ट है योग। बाबा कहते योग में तुम कंपेंसेट नहीं कर पाओगे, अंत में कंपेंसेट नहीं हो पाएगा, जो बहुत लंबे समय से योग का अभ्यास किया है अंत में योग में पास होगा। मुरली सारी मुरलियां दिन रात पढ़ लोगे एक करके, लेकिन दिन रात एक करके योग नहीं हो सकता है, इसलिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए योग का, तो भी जाके अंत में पास। इस पढ़ाई में पास वो होंगे जो योग में पास, योग में जो फेल हुआ वो चंद्रवंशी बनेगा, सीधी सी बात है। इसलिए बाबा ने कहा योग को साधारण सब्जेक्ट नहीं समझो। तो योग के लिए भी जैसे बाबा मुरली एक दिन मिस नहीं किए, मम्मा एक दिन मिस नहीं किए, ऐसे मम्मा बाबा भी अमृत वेला कभी मिस नहीं, मम्मा बाबा का मैं जानकी दादी को भी देखा हूँ हॉस्पिटल में होते हुए भी एकदम एडमिट होके, कभी कभी भी मैं अमृत वेले गुड मॉर्निंग करने जाता था, एकदम दादी तैयार पूरा रेडी होके बैठी है। तो जैसे बाबा सारे जीवन काल में 2 बजे के बाद बाबा को सोया हुआ कभी कोई नहीं देखा। लच्छू दादी कहती थी 2 बजे के बाद बाबा को कभी सोया हुआ कोई नहीं देखा, और सबसे लास्ट सोते थे बाबा। मम्मा 2:30 बजे सार्फ उठ जाती थी, कितना भी कुछ हो जाए। तो हम अपनी दिनचर्या को देखें, मेरी सेवा क्या है। मैं नहीं कहूंगा कि 2 बजे सभी उठ जाइए, आपकी सेवा क्या है, कितने हार्ड वर्क है, कैसी दिनचर्या है, हर एक की तबीयत भी अलग है। लेकिन हमारे जो मुकर्रर टाइम है 3:30 बजे उठना, 4 से 4:45, ये 45 मिनट्स भी बहुत अच्छी तरह से कोई अगर लगन में मगन होके बाबा को याद करे तो भी जन्म जन्मांतर के भी कर्म दग्ध हो जाएगा। जिसके हेल्थ ठीक है, जो अपने बैलेंस कर सकता है, ठीक है जल्दी उठो। ऐसा नहीं कि फिर जल्दी उठ के फिर बीमार हो जाओ, वो भी ठीक नहीं है। आपको अपने दिनचर्या, अपनी तबीयत सब देख के बैलेंस करना पड़ेगा। और बहुत काल का अभ्यास चाहिए, किसी को देख के नशे में कंपटीशन करोगे, एसिडिटी हो जाएगी, एकदम इंडाइजेशन होगा, बहुत प्रकार का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं, बैलेंस करके 4 से 4:45 भी बिल्कुल सुस्ती ना आए, एकदम फुल अटेंशन के साथ, लगन में मगन जिसको आगे, एकदम तन्मयता के साथ। इसके लिए पूर्व तैयारी चाहिए। इसका आधार है बाबा से कितना प्यार है। योग का आधार बाबा से प्यार। प्यार नहीं तो योग रुखा सुखा अनुभव होगा, मजा नहीं आएगा। बाबा का महावाक्य है, संपूर्ण प्यार ही संपूर्ण ज्ञान है। बाबा से अगर संपूर्ण प्यार है तो वो संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण योग है। जितना प्यार, इंटेंस लव होगा बाबा के साथ, योग इतना आसान होगा, सहज होगा। भक्ति में भी कितनी तन्मयता के साथ, कितने लगन में मगन होके आप देखना, जो सच्चे भगत होते हैं। मैंने तो प्रैक्टिकली देखा हूं, बचपन में मेरा सौभाग्य है, मेरे पिताजी बहुत भक्ति करते थे, आए दिन सत्संग होता था घर में। तो जो सच्चे भगत होते हैं देखना, एकदम तन्मय होके, आनंद अश्रु झरझर, एकदम रोमांच होके, बेहोश होते हुए भी देखा हूं। और यहां स्वयं भगवान हमें मिले हैं तो कितनी तन्मयता होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए, रोमांच हो जाना चाहिए, अरे गदगद हो जाना चाहिए प्रेम से। तो ऐसी स्थिति है, अगर 4 से 4:45 भी अगर हम बाबा के प्यार में तन्मय हो जाते हैं तो अशरीरी बनना बहुत सहज है। योग अगर हमारा ठीक है तो अशरीरी अनुभव होना चाहिए, देहभान बिल्कुल एकदम हल्का हल्का हल्का, जैसे उड़ रहा हूं ऐसा अनुभव होना चाहिए। योग में हम देहभान को भूल पाते हैं, अगर नहीं पाते हैं तो फिर योग कच्चा है। एकदम हल्कापन, लाइट, बिल्कुल शरीर जैसा है ही नहीं, ऐसा अनुभव हो। मुझे अनुभव है, पहले भट्टी होती थी हमारे पांडवन में, तो दादियां संदली में बैठ के पावरफुल दृष्टि देती थी और योग करा देती थी। 3-3 दिन भट्टी होती थी। मुझे याद है मैं एक रोटी खाने के बाद भी ऐसा लगता था जब पूरा पेट भर गया, 2 घंटा सोने के बाद भी एकदम हल्का लाइट, चलते समय ऐसा लगता था मेरा पांव जमीन में है कि नहीं, करंट पूरा जैसे बॉडी में फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ऐसा लगता था। तो आप सभी भट्टी में आए हैं, कितना समय अशरीरी अनुभव होता है देखिए, क्योंकि अंत में बाबा एक दुनिया की पढ़ाई में क्वेश्चन पेपर डिक्लेयर नहीं किया जाता है, वहां एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर किया जाता है। हमारी पढ़ाई में एग्जामिनेशन डेट बाबा ने कहा 1 सेकंड पहले भी नहीं बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा पहले से बता दिया है। कौन सा क्वेश्चन आएगा? अशरीरी भाव। बाबा कहते हैं अशरीरी भाव, जो 1 सेकंड में बॉडी को भूल पाया वो बाबा के साथ उड़ जाएगा, नहीं तो चिल्लाएगा, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले। तो हम योग में कितना समय अशरीरी हो पाते हैं खुद को देखना है। तो एकदम इसका आधार तन्मयता, लगन में मगन, प्यार में गदगद भाव विभोर, एकदम खुशी में रोमांच, तब जाके शरीर भूलेगा। एकदम हल्कापन, बिल्कुल लाइट जैसा। तो आधा पौना घंटा भी अगर हम पावरफुल मेडिटेशन करते हैं तो हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध होगा। चलते फिरते जो हल्का फुल्का याद में रहते हैं उसमें विकर्म दग्ध नहीं होगा, उसमें विकर्म नहीं करेंगे क्योंकि बाबा याद है, लेकिन विकर्म दग्ध करने के लिए एकदम पावरफुल स्थिति चाहिए, ज्वाला स्वरूप स्थिति चाहिए। अब भट्टी में सभी आए हैं और ज्वाला स्वरूप का अनुभव करने के लिए, तो अमृत वेला एक दिन भी मिस ना हो, एक दिन भी मिस ना हो। सबसे वरदानी वेला अमृत वेला है। और बाबा का महावाक्य मैं आपको सुना देता हूं। बाबा ने कहा कि जो बच्चे सवेरे सवेरे उठकर स्नान पानी आदि कर बड़े प्यार से बाबा को याद करते हैं वही बच्चे भविष्य में राजा बनेंगे। ये बाबा का महावाक्य है, क्योंकि सवेरे नहा लेने से एकदम फ्रेश हो जाते हैं एकदम। हम मंदिर भी जाते हैं, पहले जाते थे तो बिना नहाए धोए जाते थे क्या? फ्रेश कपड़े पहन के जाते, और यहाँ उठा खटिया में से वही कपड़े पहन के, बाल भी ऐसा है, और बैठ के बाबा बाबा दृष्टि देंगे, सोचो तो सही। पहला काम उठते ही स्नान कर लेना है, फ्रेश लगेगा एकदम बिल्कुल, और एकदम बैठना है बाबा के साथ, फिर देखो क्या मजा आता है। अगर शरीर तबीयत ठीक नहीं है तो स्पंजिंग कर दो, मॉपिंग कर दो, अपना एक नेपकिन को भिगो के ये कर लो गर्म पानी में, लेकिन फ्रेश होना है, अच्छा कपड़ा पहनना है, नहीं तो वही रात्रि का कपड़ा पहनेंगे तो सुस्ती आएगी, बिल्कुल पावरफुल हो ही नहीं सकता है। सारा दिन भी अटेंशन देना है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम कितना भी कुछ किए हो, कितनी सेवा किए हो, कितना भी कुछ किए हो, अगर एक अभ्यास नहीं किए हो तो फेल हो जाओगे लास्ट में। कौन सा? वो है रूहानी ड्रिल। बाबा ने कहा बहुत समय से जो रूहानी ड्रिल का अभ्यास किया है अंत में पास हो जाएगा। रूहानी ड्रिल क्या? अभी अभी मैं साकारी ब्राह्मण स्वरूप, अभी अभी मैं आकारी फरिश्ता स्वरूप, अभी अभी मैं निराकारी ज्योति स्वरूप, अभी अभी मैं निर्विकारी देवात्मा स्वरूप। साकारी, आकारी, निराकारी, निर्विकारी, जैसे ड्रिल करते हैं फिजिकल ड्रिल भी, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पीटी करते ना, ऐसे यहां भी ऐसे मन से ही करना है। साकारी, आकारी, निराकारी, निर्विकारी, साकारी, एकारी, निराकारी, एक एक मिनट का पहले अनुभव हो, फिर उसको बढ़ाते बढ़ाते एक एक सेकंड में होना चाहिए। होता है एक सेकंड से दो सेकंड हो जाए तो फेल हो जाओगे। बाबा ने कहा फट से बना, ये बहुत कल का अभ्यास चाहिए। जब भी योग में बैठते हैं ड्रिल करें, जब भी योग में बैठते हैं ड्रिल करें, इसमें सुस्ती भाग जाएगी। जैसे दुनिया में भी स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी जब मैदान में जाते हैं पहले पीटी करते हैं, ये ड्रिल करें पहले। और योग और पावरफुल बनाने के लिए बाबा से प्रतिज्ञा कर वरदान लें। जितना आप बाबा के सन्मुख प्रतिज्ञा करें, बाबा मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, ऐसा बन के दिखाऊंगा, बाबा वरदान दे देते हैं। सवेरे सवेरे अमृत वाले वरदान लेना है बाबा से। बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करना है और बाबा से लाइट माइट लेने, बाबा से कंबाइंड हो जाना है एकदम, बिल्कुल मैं शिव शक्ति हूं, कंबाइंड स्वरूप हूं, लाइट हाउस माइट हाउस हूं, सारे विश्व ग्लोब पर पूरा एकदम सकाश फैला रहा हूं, ऐसा अनुभव करना है। बाबा के साथ एकाकार हो जाएं, बिल्कुल पावरफुल स्टेज का अनुभव करें। सवेरे शाम फरिश्ता बनकर बाबा कहते उड़ो, मनसा सेवा करो, चारों तरफ सकाश दो। बाबा ने कहा है कि जो अपने लिए, एक होता है योग अपने लिए, दूसरा होता है दूसरों के लिए। तो जो राजा क्वालिटी की आत्माएं होंगे, चार से पौने पांच जो समय है या नुमा शाम का समय है, विश्व सेवा करेंगे, मनसा सेवा करेंगे, सारे विश्व को सकाश देंगे, पांचों तत्वों से सहित सभी आत्माओं का उद्धार के लिए सकाश देंगे। तो योग सब्जेक्ट को बाबा ने कहा साधारण नहीं समझो, योग भी एकदम अच्छी तरह से, योग में परफेक्ट होंगे तो पास होंगे, नहीं तो चंद्रवंशी बनना पड़ेगा। धारणा सब्जेक्ट, बाबा कहते हैं बच्चे एक भी दैवी गुण की कमी हो जाएगी तो तुम सतयुग का 111 में नहीं आ सकते हो, क्योंकि जो देवताएं होंगे सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, और आगे इच्छा मात्रम अविद्या, संपूर्ण जीवन मुक्त देवी देवताएं, ये देवताओं की पूरी महिमा। तो एक भी कला कम हो जाए तो बाबा कहते हैं सत्यु का आधे में आएंगे, क्योंकि 15 कला हो गया तो 1250 साल से आधा समय कट हो जाएगा, 2 कला कम हो गया तो सीधा त्रेता युग में आएंगे, पूरा 16 कला संपूर्ण होना पड़ेगा, एक भी गुण कम ना हो, एक भी कला कम ना हो। इसलिए बाबा से सर्व ज्ञान गुण शक्तियों से खुद को भरना है। अभी लास्ट तो फास्ट कैसे करें, सर्वगुण कितने गुण है, एक डायरी पहले बना था दादी जान की, कहते हम 56 गुण विचार सागर मंथन कर लिखे, वो डायरी में 56 गुण था देवताओं की, 36 गुण तो आप पांडवन में वहां डिस्प्ले है देखे होंगे आप सभी, लेकिन 56 गुण है। तो ये सारे गुण अभी कैसे लास्ट सो फास्ट कैसे हो सकता है, बाबा ने कहा सिर्फ एक गुण धारण करो तो सारे गुण ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आ जाएंगे। जैसे किसी राज्य का राजा को अपना कोई बना दिया तो सारा राज्य ही अब अपना हो गया ना, तो सभी गुणों का राजा कौन सा है, सभी गुणों का राजा, सभी गुणों का राजा है हिम्मत साहस। राजा जो होता है साहसी होगा, ब्रेव होगा, साहस सभी गुणों का राजा है। और सभी गुणों की रानी, सभी गुणों की रानी संतुष्टता है। ये दोनों राजा रानी अपना हो गया तो राज्य ही अपना है ना, तो अगर संतुष्टता और साहस ये दोनों गुण हमारे जीवन में आ जाए तो बाकी सारे गुण आ जाएंगे। ये दोनों गुण को अपनाना है, इसके लिए मेहनत करना है। इसी प्रकार बाबा कहते एक शक्ति धारण करो तो सारी शक्तियां तुम्हारी आ जाएंगी। कौन सी? वो है सहन शक्ति। जो सहन शक्ति धारण करेगा सहनशाह हो जाएगा, बाबा ने कहा ऑटोमेटिकली सारी शक्तियां आ जाएगी। और एक वरदान लो तो सर्व वरदान आपको प्राप्त हो जाएगा। बाबा से एक वरदान लेना, इतने सारे वरदान रोज वरदान सुन रहे हैं लेकिन कितना जीवन में आचरण में कहां कितना तक है। बाबा कहते एक वरदान याद करो, सब वरदान तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे। कौन से वरदान? ये लास्ट ऑफ फास्ट की विधि में सुना रहा हूं। सर्वोच्च वरदान कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ वरदान कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ वरदान बाबा कहते मास्टर सर्वशक्तिवान भव, यह है सर्वश्रेष्ठ वरदान। लेकिन सर्वोच्च वरदान, उससे भी बड़ा वरदान कौन सा? बाप समान भव। बाप समान हो गया तो सब आ गया ना उसमें, संतुष्ट मणि हो गया, विश्व कल्याणकारी हो गया, सब सब उसमें सब कुछ आ गया। बाप समान भव तो सवेरे सवेरे उठ के बाबा को कहना, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप समान बना दो, आप समान मीठा बना दो, आप समान पवित्र बना दो, बाबा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप ही मेरे चैतन्य चित्रकार हो, चैतन्य मूर्तिकार हो, बाबा आप मेरे भाग्य विधाता हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जैसा बना दो मुझे। बाप समान भव, एक शब्द तो याद रह सकता है ना, उसमें सब कुछ आ जाता है। मास्टर सर्वशक्तिवान भव, तो बाबा से रोज वरदान लेना है। ये दो वरदान भी लेंगे तो सारे वरदान जीवन में आ जाएंगे। तो अभी धारणा मूर्त में जो नंबरवार होंगे वो पीछे हो जाएंगे। धारणा, हमें धारणा स्वरूप बनना है। देवताओं के जैसे चाल चलन बोल व्यवहार बहुत मीठा होना चाहिए, लून पानी कभी नहीं, खीर खंड होके रहो, बाबा के आपस में मिलजुल के रहो, एक दूसरे के प्रति सुभावना। तो बाबा जो प्रैक्टिकल जीवन में जो जैसा होना चाहिए हमें जो बता रहे, धारणा में जो कच्चे होंगे वो कभी ऊंच पद नहीं पा सकते, कभी नहीं मिलेगा ऊंच पद। कितना भी मुरली पढ़े, कितना भी योग करें, अगर धारणा में नहीं है तो क्या काम का है। प्रैक्टिकल धारणा मूर्त बाबा देखना चाहते हैं। चौथा सब्जेक्ट है सेवा। सेवा में नंबर वन कैसे ले सकते हैं? बाबा कहते हैं स्व सेवा विश्व सेवा का बैलेंस रखो, दोनों का बैलेंस। ऐसे नहीं कि दूसरों की सेवा करते 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 अपनी सेवा ही छूट जाए, नहीं, दोनों का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। स्वयं की भी उन्नति होती रहे और साथ साथ विश्व सेवा भी करें। सेवा नहीं करेंगे तो मुझ पद नहीं मिलेगा। जो यहां बहुतों की सेवा करते हुए सब सबके दिलों पर राज करेगा वो भविष्य में भी राज होगा, राजा बनेगा। इसलिए सेवा सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवा में स्वोन्नति समाहित है। जो जितनी सेवा करेंगे ऑटोमेटिकली अपने ऊपर अटेंशन होता है। मैं अगर दूसरों को सुनाता हूं तो मैं भी करूं ना, पहले अपने ऊपर अटेंशन होगा। और सेवा में भी सर्व प्रकार की सेवा हो, ऑलराउंडर सेवाधारी। जो ऑलराउंडर सेवाधारी है वो बड़ा, बहुत बड़ा राजा बनेंगे वो। एक प्रकार की सेवा करके खुश हो जाना नहीं, सर्व प्रकार के ऑलराउंड सेवा करी, सब प्रकार की, तन मन धन जन मनसा वाचा कर्मणा स्व सेवा विश्व सेवा यज्ञ सेवा सब प्रकार की सेवा, जहां भी जितना समय जहां मिलता है जो मिलता है सब करना। लेकिन अभी लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है मनसा सेवा, क्योंकि वाचा सेवा द्वारा आप पांच तत्वों को पावन नहीं बना सकते हो, पशु पंछी जानवरों को पावन नहीं बना सकते हो, और अंत में तो किसी के पास फुर्सती नहीं होगा, टाइम ही नहीं होगा, धीरज ही नहीं होगा सुनने के लिए। अंत में मनसा सेवा के अभ्यासी ही नंबर आगे ले लेंगे। बहुत लंबे समय से मनसा सेवा द्वारा अगर हम अभ्यासी हैं, दुआएं जमा किए हैं, तो सेवा में आगे नंबर ले लेंगे। खाली वाचा सेवा तो लिप सर्विस है, एक सेवा करके खुश हो जाना नहीं, सब प्रकार की सेवा करें। और मनसा सेवा पर विशेष अटेंशन, अमृत वेला और नुमासाम दोनों टाइम एकदम भावा के साथ। दादी जानकी क्या कहती जानते हो? दादी जानकी कहती है कि मैं शिव बाबा को माथे पर रखती हूँ और एक कंधे में बाबा को बिठाती हूँ, एक कंधे में मम्मा को बिठाती हूँ, मैं हनुमान बनकर सवेरे उड़ती हूँ एकदम ऊपर चक्र लगाती हूँ। तो त्रिमूर्ति लाइट धारी बाबा ने भी कहा है, महावाक्य है अव्यक्तवादा के, त्रिमूर्ति लाइट धारी। तो इसलिए सवेरे सवेरे बाबा के साथ कंबाइंड होके सब पर एकदम सकाश दें, सबको पवित्रता की शांति की लाइट माइट की एकदम सकाश फैलाएं अंतरिक्ष से, सब पर एकदम मनसा सेवा करें। ये अभ्यास करना पड़ेगा बहुत लंबे समय का, क्योंकि अंत में सब फेल हो जाएगा, साधन फेल हो जाए सफल हो जाए बैठ के। जब बहुत समय से मन द्वारा सेवा किया होगा, वो मन कितना भी हलचल हो जाए कुछ हो जाए, मन जैसा चाहे वो मन को अपने कंट्रोल में रख सकता है, नहीं तो नहीं होगा अंत में। तो मनसा सेवा पर, और बहुत इंपॉर्टेंट है अभी धन, बाबा कहते सफल करो तो सफलता मिलेगी, नहीं तो किसकी दबी रहेगी धूल में, किसका राजा खाए फिर पश्चाताप होगा। जितना हो सके सफल करना है, अभी समेटना है, बहुत विस्तार में और नहीं जाना है कहीं इधर उधर, सेवा में सफल करना है। तो ऐसे चारों सब्जेक्ट पर विशेष अटेंशन दे के पुरुषार्थ करेंगे तो हम लास्ट ऑफ फास्ट हो सकते हैं और फर्स्ट भी जा सकते हैं। कोई कितना भी पीछे आया हो, अभी मेरा तो एक शिवाव दूसरा न कहे और किसी को नहीं, कहीं नहीं देखो। अगर ज्ञान का सब्जेक्ट में पास होना है तो खुद को देखना है। जैसे स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो मुझे कैसे फर्स्ट डिवीजन पास होना है देखना होता है, दूसरा कोई क्या पढ़ रहा है कहाँ क्या कर रहा है हमको कोई मतलब नहीं। यहां भी इस विश्वविद्यालय में ज्ञान कहता है खुद को देखो। योग सब्जेक्ट में पास होने के लिए खुदा को देखो, एक बाबा मेरा एक बाबा दूसरा ना कोई, और किसी को नहीं दिखना है, सी फादर, और किसी को नहीं दिखना है, बिल्कुल नहीं। धारणा के सब्जेक्ट में पास होना है तो लक्ष्मी नारायण को देखो, रोज बाबा कहते 6 फुट हाइट का लक्ष्मी नारायण बनाओ, खड़े हो जाओ सामने, देखो मैं ऐसा बना हूं ऐसा बनी हूं। और सेवा का सब्जेक्ट में पास होना है तो मम्मा बाबा को देखो, हड्डी हड्डी कैसे दधीची ऋषि जैसा सफल कर दी, और किसी को नहीं देखना है, और किसी को नहीं देखना है। ज्ञान कहता है खुद को देखो, योग कहता है खुदा को देखो, धारणा कहती है लक्ष्मी नारायण को देखो, और सेवा कहती है मम्मा बाबा को देखो बस, और किसी को नहीं देखना है। सबसे गुणचूर बनकर गुण उठाना ठीक है, लेकिन फॉलो करना है बाबा को बस, मेरा तो एक सी बाबा दूसरा ना कहे, और कहीं नहीं किसी से सुनना नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल तुम ही से सुनो तुम्हारा ही सुनो। अगर बाबा कम हवा के सुनते हैं राइट है, नहीं तो बाबा की बातें कोई सुनाता है तो राइट है, और फालतू फलाना महात्मा ऐसा बोला ये बोला, अरे इस द्वापर युग से सुन सुन के क्या हुआ, किसी का कुछ नहीं सुना है, बाबा का ही सुनना है। और जीवन में प्रैक्टिकली जो करेगा वो पाएगा, ठीक है। ओम शांति, टाइम हो गया, बहुत बहुत बधाई, सभी तीव्र पुरुषार्थी बने। जगदीश भाई कहते थे मेरे भाई और बहनों फरिश्ता बनो, फरिश्ता बनो तो ही बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो हम लास्ट यही है हमारा, कैसे जल्दी जल्दी फरिश्ता बने, ऊंची ऊंची सोमान में सारा दिन, या तो मैं फरिश्ता हूं नहीं तो बिंदु हूं, फरिश्ता हूं बिंदु हूं, ये अभ्यास करना है।